हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा परी बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत। वो अपने परी वाले कपड़ों में थी, ऊपर से उसने अपना ताज पहना हुआ था। वो ताज तारा परी की खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। तारा परी को जो कोई देख रहा था बस देखता ही रहा। तारा परी इस बात को लेकर भी खुश थी कि आज वो अकेली इस परीलोक में नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ उसका बच्चा भी था। भले ही वो उसके साथ ना हो, लेकिन वो उसके पेट में उसके साथ ही मौजूद था, इसीलिए तारा परी काफी खुश थी। लेकिन तभी अचानक से तारा परी को अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई। तारा परी की हैरत का ठिकाना नहीं था, क्योंकि परीलोक में आज तक इस तरह की स्मेल नहीं आई थी। तारा परी को काफी ज्यादा अजीब लगा और तभी उसने सोनल परी से पूछा, क्या हो रहा है, इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है? सोनल परी ने हैरानी से तारा परी की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो तारा परी, यहाँ तो किसी तरह की कोई स्मेल कोई भी बदबू नहीं आ रही है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो पूरा का पूरा परीलोक सुगंधित फूलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी फूलों की सुगंधित खुशबू ही आती है, तुम जिस बदबू की बात कर रही हो वो नहीं आती है। तारा परी ने सोनल परी से कहा, नहीं नहीं, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू आ रही है। तभी रानी परी वहाँ आ गई। उन्होंने आते ही तारा परी को गले से लगा लिया और कहने लगी, मेरे बच्चे, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं, फाइनली तो आज अपने घर आ ही गई है। और दोनों माँ बेटी कुछ देर एक दूसरे को प्यार करती रहीं। सभी परियों की आंखों में मोती थे, क्योंकि सभी तारा परी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तारा परी ने रानी माँ से कहा, रानी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे परीलोक में कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। रानी माँ ने भी हैरान होते हुए तारा परी से कहा, लेकिन बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो, परीलोक में भला बदबू कैसे आ सकती है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तारा परी ने अपनी रानी माँ से कहा, नहीं रानी माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, मैं इस बदबू की दिशा में जाती हूँ। ऐसा कहकर तारा परी जल्दी ही फूलों के बगीचे से निकलते हुए थोड़ा थोड़ा आगे जाने लगी। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, वैसे वैसे बदबू तेज होती जा रही थी, और अचानक से तारा परी बगीचे के एक हिस्से पर एक जगह जाकर रुक गई। और जैसे ही वो रुकी, वो जोरों से चीख पड़ी, क्योंकि उसके ठीक सामने एक परी का जिस्म बड़ी ही बुरी तरीके से सड़ रहा था और उसमें से बदबू आ रही थी। जैसे ही परीलोक के सारे परिवारों ने ये सब कुछ देखा, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और सभी जोरों से चीख पड़े, क्योंकि वो उनके बीच में से ही एक परी थी। उसका नाम रीत परी था। रीत परी की ऐसी हालत देखकर सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और तभी रानी माँ कांपते हुए बोली, ये सब क्या है, ये सब किसने किया है, और ये रीत परी की हालत इतनी भयानक कैसे हुई, और हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला, और तुम्हें आते ही इसकी बदबू आ गई, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही है। जरूर किसी ने ये किया है, लेकिन किसने, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी परियां आपस में एक दूसरे को कांपते हुए देखने लगी, और कुछ परियों की आंखों से तो मोती निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि सभी रीत परी की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह से रोने लगी थी। तभी अचानक तारा परी रीत परी के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। रीत परी के जिस्म को देखकर तारा परी पूरी तरह से डर गई और कांपने लगी। रानी माँ ने तारा परी से कहा, क्या हुआ बेटी, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतनी बुरी तरह से कांप रही हो? तारा परी ने टूटी फूटी जुबान में रानी माँ से कहा, रानी माँ, रीत परी के साथ उसे मारने से पहले ज्यादती हुई है, यानी कि किसी ने उसकी इज्जत लूटी है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, बाकी सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अजीब सा गमगीन सा माहौल हो गया। थोड़ी देर पहले जहां पर तारा परी के आने की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां पर एक परी की मौत का दुख मनाया जाने लगा था। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी रानी माँ ने तारा परी की ओर देखते हुए कहा, बेटी, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो जादुई छड़ी तक नहीं है ताकि मैं रीत परी की मौत देख सकूँ। तारा परी ने अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी अपने हाथ में ले ली और कहने लगी, आप अच्छी तरह से जानती हैं रानी माँ, आपके बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं तो वो मेरे पास है। मैं अभी रीत परी की मौत देखती हूँ कि इसके साथ हुआ क्या था, और कोशिश करती हूँ रीत परी को जीवित करने की। जैसे ही तारा परी ने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा, सभी तारा परी की ओर देखने लगे। तारा परी तो वहां तीन असुरों का अंत करने के लिए आई थी, लेकिन ये एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। तभी तारा परी ने रीत परी के ऊपर अपनी जादुई छड़ी से कुछ मंत्र पढ़कर फूंका, और देखते ही देखते एक बड़ी सी स्क्रीन उनके सामने चलने लगी। उसमें दिखाई देने लगा, रीत परी अकेली फूलों में खेल रही थी,
इतना ही नहीं, वो कभी किसी फूल के साथ बातें कर रही थी तो कभी खुशी खुशी चारों तरफ टहल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रानी माँ, तारा परी और जितने भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे सभी रीत परी को बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे थे। तभी अचानक रीत परी ने अपने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वो तीन असुर खड़े हुए थे जिन्होंने रानी माँ की जादुई छड़ी ली थी। और तभी उनमें से एक असुर बोला, हमने रानी माँ को आज रात तक की मोहलत दी है, लेकिन ये परी इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखकर तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है। दूसरा असुर बोला, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्यों ना इस परी के साथ ही शुरुआत की जाए। तीसरा बोला, नहीं नहीं ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, हमने रानी माँ को भी 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे तक हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा, वो खूबसूरत परी हमारे पास भेजेंगी, लेकिन उससे पहले हमें अपनी शर्त नहीं तोड़नी चाहिए। तीसरा असुर बोला, हाँ हाँ हम जानते हैं कि हमें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इस परी को देखकर मेरा ईमान पूरी तरह से डोल गया है। एक काम करते हैं, इस परी को हम अगवा कर लेते हैं और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ छुपा देंगे, और इसकी लाश के बारे में किसी को पता न चले इसके लिए हम अपने मंत्रों का उच्चारण करके चारों तरफ फूलों की खूबसूरत खुशबुओं को और बढ़ा देंगे। इस बीच इसकी बदबू किसी को भी नहीं आएगी। ऐसा कहकर वो राक्षस जमीन पर रीत परी के ठीक पीछे उतर आए, और इससे पहले कि रीत परी चिल्लाती या कुछ करती तभी एक असुर ने उसका मुंह दबोच लिया, और वहीं फूलों के गार्डन में उन्होंने उसके कपड़े उसके जिस्म से अलग करके बुरी तरह से भयानक दरिंदगी करनी शुरू कर दी, और उसके एक एक अंग को उन्होंने बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी। इतना ही नहीं, उसके नाजुक अंगों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से तीनों असुरों ने खिलवाड़ किया। जैसे ही तारा परी और बाकी सब ने देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी रूह तक कांप गई। इतना भयानक मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर तारा परी और बाकी की परियां रानी माँ समेत कांप कर रह गईं। तारा परी बड़े ही ध्यान से ये सब कुछ देख रही थी। रीत परी की इज्जत की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, और तीनों असुरों ने कितने ही लंबे समय तक रीत परी के साथ ज्यादती की, वो भी परीलोक में ही।
और तभी तारा परी ने उस जादुई स्क्रीन पर देखा कि सोनल परी अपनी बाकी की सहेलियों के साथ इस जगह आई थी। रीत परी चिल्लाकर उन्हें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी एक राक्षस ने एक जादू का काला घेरा इस तरह का बना दिया था कि अब रीत परी के साथ साथ वो असुर पूरी तरह से गायब हो गए थे। किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन असुरों के पास काफी सारी शक्तियां थीं जिनका इस्तेमाल उस वक्त वो कर रहे थे। सोनल परी बिल्कुल रीत परी के बराबर में खड़ी हुई थी, और रीत परी के आंसुओं से सोनल परी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनल परी को कुछ एहसास ही नहीं हुआ। तभी सोनल परी, जो कि बड़ी सी स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रही थी, उसे याद आया कि उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि गार्डन में कोई है या कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसे बुला रहा है, लेकिन सोनल परी को अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया था। अब सोनल परी को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने खींचकर अपने मुंह पर एक चांटा मार दिया, और लगातार उसने कई चांटे अपने मुंह पर मारने शुरू कर दिए। तभी तारा परी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रुको तुम परेशान मत हो। उसके बाद जब सोनल परी, तारा परी सभी एक बार फिर उस स्क्रीन की ओर देखने लगे, उन्होंने देखा सोनल परी जैसे ही बगीचे से अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली, उन्होंने एक बार फिर रीत परी के साथ दरिंदबी की सारी हदें पार करना शुरू कर दिया था। और जब उन तीनों असुरों का मन पूरी तरह से भर उठा था, तब उन्होंने उल्टे सीधे कपड़े पहन दिए थे, और उसके बाद एक बड़े ही धारदार हथियार से रीत परी की कमर के नीचे का धड़ काटकर वो उसे अपने साथ ले गए थे। और जाने से पहले उन्होंने रीत परी को बगीचे में ही इस तरह से छुपा दिया था कि किसी को उसके बारे में पता ना चले, क्योंकि जब तक 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते तब तक इस रीत परी की मौत की बात रानी माँ यानी कि परीलोक में नहीं पता लगने देना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का पूरा यकीन था अगर रानी माँ अपनी जादुई छड़ी के लिए अपनी परी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हुई तो तब वो रीत परी के धड़ का सौदा उसके साथ कर सकते थे, क्योंकि किसी भी परी की जान नहीं जाती थी। अगर उसका धड़ सही सलामत है तो जीवित कक्ष में उसे ले जाकर उसके अंदर प्राण फूके जा सकते थे, लेकिन वो लोग इसीलिए रीत परी का आधे से ज्यादा धड़ अपने साथ ले गए थे, और उन्होंने आधा धड़ वहीं परीलोक के बगीचे में इस तरह से छुपा दिया था कि किसी को उसके बारे में पता ना चले, और साथ ही साथ सुगंधित फूलों की खुशबू चारों तरफ फैला दी थी ताकि किसी को भी रीत परी की मृत्यु की बदबू ना आए। लेकिन तारा परी ने जैसे ही परीलोक में अपना कदम रखा था, और कदम रखने के तुरंत बाद ही उसे अजीब सी बदबू आने शुरू हो गई थी। तब रानी माँ ने कुछ परियों को आदेश दिया था कि रीत परी का बाकी बचा धड़ जीवित कक्ष में ले जाया जाए, और तब तक वो तारा परी को अपने साथ परी महल के अंदर ले आई थी। परी महल में अंदर लाकर रानी माँ ने तारा परी से कहा, मेरी बेटी बड़े दिनों के बाद पृथ्वी लोक से आई है, मैं चाहती हूँ तुम पहले कुछ न कुछ भोजन या कुछ न कुछ अपनी पसंद का फल ग्रहण कर लो, उसके बाद तुम आराम करो, थोड़ी देर आराम करने के बाद तुम वापस पृथ्वी लोक लौट जाना। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारा परी हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगी
और कहने लगी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ पृथ्वीलोक लौट जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ उन असुरों का अंत करके आपकी जादुई छड़ी के साथ साथ अब तो मुझे रीतपरी का आधा धड़ भी उनसे वापस लाना है। उसके बाद ही मैं परीलोक से पृथ्वीलोक वापस जाऊंगी। तभी रानी माँ ने तारापरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, रीतपरी की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं तुझे उन दरिंदों के सामने भेजूं। और वैसे भी तुम परीलोक की सबसे खूबसूरत परी हो। अगर तुम वहां गई तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और हो सकता है वो रीतपरी के जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ करें। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होने देना चाहती हूँ मेरी बच्ची। तूने वैसे ही अपनी जिंदगी में इतने सारे दुख देखे हैं उस राक्षस की वजह से, और अब एक और दुख तुम्हारी जिंदगी में। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। तभी तारापरी ने रानी माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मैं अच्छी तरह से आपकी चिंता समझती हूँ रानी माँ। आखिरकार आप एक माँ हैं और एक माँ अपनी बेटी की चिंता करेगी ही, लेकिन ये समय मेरा चुप बैठने का नहीं है। ये समय मेरा मुकाबला करने का है। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है। आपकी बेटी अब किसी से नहीं डरती है। और शायद आप भूल रही हैं, शक्तिशाली जिन्नातों का वंशज जिस वक्त मेरे पेट में है, जो अपने आप ही मुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो आप क्यों फिक्र करती हैं? आपकी बेटी है ना, वो सब ठीक कर देगी। क्या करेगी तारापरी? क्या तारापरी उन असुरों का मुकाबला कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।